नई बनी संसद की इमारत में लोकसभा और राज्यसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विशेष सत्र के पहले दिन के कामकाज में सालों से अटका ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश कर दिया गया। पूरी दिन चली लंबी बहस के बाद सभी दलों के सहयोग से विधेयक को लोकसभा से पारित भी कर दिया गया। बिल के समर्थन में 454 सांसदों ने वोट किया, वहीं 2 सांसदों ने इसके विरोध में अपना मत रखा। अंत में लोकसभा स्पीकर ने इस विधेयक को संसद के 2/3 से ज्यादा सांसदों के समर्थन से पारित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पल था। किसी भी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में एक साथ इतने सांसद कम ही मौकों पर आते हैं। पेश किए इस बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा गया है, जो देश की आधी आबादी की लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में यानी विधायकों और सांसदों के पदों में 33% भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हालांकि राज्य की विधान परिषदों और राज्यसभा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद से अब तक महज 700 के करीब महिलाएं ही संसद तक पहुंच पाई हैं, जबकि इस दौरान 7,500 के करीब सांसद चुनकर संसद में पहुंचे। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अब तक महज 10% महिलाएं ही संसद तक पहुंच पाई हैं, जबकि आबादी में उनका हिस्सा आधा या उससे अधिक है। वहीं प्रतिनिधित्व महज 10% से भी कम है। क्या आपको ये चौंकाता नहीं है? किसी भी लिहाज से महिलाओं की भागीदारी के बगैर प्रगति की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इन सब के बावजूद यह पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया हो। इससे पहले देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर इसको कानून बनाने की कोशिश की और यह 27 साल से चल रही एक लंबी लड़ाई है जो शायद अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इसे HD देवगौड़ा सरकार ने संसद के पटल पर रखा था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका। उसके बाद इसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संसद के पटल पर रखा गया, लेकिन तब आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग के चलते यह बिल पास नहीं कराया जा सका। इसके बाद साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे राज्यसभा से तो पास करा लिया गया, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के विरोध के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका। अलग अलग समय पर हर दल अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका समर्थन और विरोध कर चुका है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय भारतीय संविधान के 3 मुख्य मूल आधार है। लोकतांत्रिक देश और समाज इन 3 मूल आधारों पर ही टिका हुआ है और उम्मीद की जाती है कि सरकार और नागरिक मिलकर इन आधारों की रक्षा करते हुए देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। श्रोताओं, महात्मा गांधी कहते थे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र हो, तब जाकर ही कोई काम सफल होता है। महिला आरक्षण विधेयक के साथ भी यही स्थिति है। इसका कारण है कि सरकार जिस विषय पर कानून बना रही है वो उसको तुरंत लागू भी नहीं कर पाएगी। महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए जरूरी है जनसंख्या के ताजा आंकड़े उपलब्ध हो। दूसरा कारण है कि 2026 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए परिसीमन किया जाना, जिसके बाद मुमकिन है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज्यादा हो जाए और दक्षिण भारत, जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया, उसको इसका खामियाजा कम सीटों की शक्ल में देखने को मिले। केंद्र की सरकार संख्या बल पर बनती है और मुमकिन है कि जो राजनीतिक पार्टियां दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, वो उत्तर भारत के सहारे संख्या बल पर अपनी सरकार बनाने का प्रयास करें। इसीलिए इसे ताजा आंकड़ों के साथ लागू किया जाना जरूरी है और यह महिला आरक्षण कानून को लागू किए जाने में बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि 2021 में होने वाले जनगणना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अंतिम बार जनगणना 2011 में कराई गई थी, जबकि 2023 का साल अपने आखिरी तिमाही में पहुंचने वाला है। अगले साल आम चुनाव है। जनगणना कराने से लेकर उसका विश्लेषण करने के बाद अंतिम आंकड़ों को प्रकाशित करने में 4 साल के लगभग समय लगेगा। ऐसे में यह कानून कब लागू होगा इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जनगणना ना कराए जाने को लेकर जो कारण है, वह 2020 के शुरुआत में फैला कोविड है, जिसके कारण सभी जरूरी सेवाओं को रोक दिया गया था। हालांकि 2021 में कोविड अपने पीक पर पहुंचकर लगभग खत्म हो गया। उसके बाद भी जनगणना नहीं कराए जाने का कोई वाजिब कारण सरकार द्वारा नहीं बताया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, उसे विशेष सत्र में संसद के पटल पर लाने और उसे पारित कराने के पीछे मंशा क्या है? क्योंकि यही सरकार है जिसने कई बार ऐसे कानून बनाए और उन्हें लागू किया जिन पर थोड़ा सा रुककर और सोच समझकर आगे बढ़ा जाना था। इसमें CAA, NRC, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करने का कानून हो या फिर GST लागू करना, इन सभी को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। वैसे तो विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का समर्थन किया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी की। कई दलों ने आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग करते हुए इसका समर्थन किया है। सवाल है कि जिस कानून को इतने जल्दबाजी में लाया जा रहा है, उसे लागू करने के लिए पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई, या फिर यह केवल आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में देरी का कारण क्या है? कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसे केवल अगले चुनाव में वोट पाने की जुगाड़ के तौर पर देख रही है? क्या संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिल जाने से उनका सही मायनों में प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, क्योंकि पंचायत में तो ये आरक्षण पहले से ही मौजूद है? जो भी हो, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? केवल कानून बनाने भर से ही उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? आप इस मसले पर जो भी सोचते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी के ऐप पर ऐड का बटन दबाकर। आप भले ही इस मसले के पक्ष में हो या विपक्ष में, पर अपनी बात यानी अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि हमारा मानना है बोलेंगे तो बदलेगा।